ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮತ್ತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸೂರಜ್ ಭಾಯ್ ಕೇತಾ ಭಾಯಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಹಮೇಶಾ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಪರಮಾದರಣೀಯ ಸೂರಜ್ ಭಾಯ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೇ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಬತ್ತಿಯೋ ಕೆ ಶೃಂಖಲಾ ಕೆ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಿ ಬತ್ತಿ ಗುಜರಾತ್ ಕೆ ಭಾಯ್ ಬಹನೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಆಪ್ಕಾ ಹಮ್ ಬಹುತ್ ದಿಲ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಅಭಿವಾದನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ऐसा कौन सा ब्राह्मण होगा जो बाबा को मिलने आए और सूरज भाई को न पहचाने? है कोई जो सूरज भाई को न जानता हो? एक ऐसी आत्मा जो भगवान के महावाक्यों को मनन और चिंतन के द्वारा पुरुषार्थ की गति में लाती हो, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके बोल, जिनके वरदानी महावाक्य अनेकों को स्वमान और नशा चढ़ाने के निमित्त बनता हो और जिनका पुरुषार्थ अनेक आत्माओं के लिए चेहरे और चलन को परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा देता हो, ऐसा एक विरल व्यक्तित्व आज हम सबके बीच उपस्थित है. ये हमारा भी सौभाग्य है कि जो हमेशा बाबा के इस बेहद यज्ञ की भंडारी की जिम्मेवारी भी निभाते हैं, लेकिन साथ साथ भारत सहित विश्व के भी कई स्थानों पर आप अपनी सेवाओं के कारण बिजी रहते हैं, पर इन दिनों में आप हमारे बीच हैं. ये एक ड्रामा का बहुत बड़ा लक हम सब भाई बहनों के लिए है. तो आज हम सबके बीच आदरणीय सूरज भाई, चेहरा और चलन जो बाबा ने खास इस सीजन में अंडरलाइन कराया है, हमारा सबसे बड़ा सेवा का साधन, सबसे पहला सेवा का साधन यह है. अगर उसमें हमारा ज्ञान आ जाए, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, उसमें हमारा सम्मान ऐड हो जाए, तो किस प्रकार से हो सकता है? वो खुश मिजाज कैसे रह सकता है? उसको कैसे सम्मान दिया जा सकता है? और वो सेवा के निमित्त या स्वयं के प्रोग्रेस के निमित्त कैसे बन सकता है? इन बातों को हम सबके बीच आज सूरज भाई रखेंगे. पुनः पुनः सूरज भाई आपका इस भट्टी के बीच स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं. तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय सूरज भाई को.
ओम शांति. सभी जानते हैं चेहरा हमारी स्थिति का प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना? ये भाषा तो समझते हैं ना. जो कुछ हमारे अंदर है वो हमारे चेहरे पर रहता ही है. आज तक की सेवाओं में भी ये नोट करने वाली बात है कि जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है उनकी सेवाएं भी श्रेष्ठ हैं. मैंने ऐसे कई कुमार देखे जिनकी स्थिति बहुत अच्छी, छोटे कुमार, दसवीं क्लास में पढ़ने वाले हैं, और उनकी स्थिति के कारण उनका सारा परिवार ज्ञान में आ गया. मुझे कहानी याद आ गई महाभारत की, आपको काम आएगी ये कहानी. दिखाया है कि युधिष्ठिर को 5 मिनट का नरक मिला, क्योंकि उनको एक बार युद्ध के मैदान में झूठ बोलना पड़ा था, अश्वत्थामा मारा गया. 5 मिनट के लिए देवदूत उन्हें नरक में ले गए, 5 मिनट पूरे हो गए, चलने लगे तो नरक के निवासियों ने आवाज लगाई कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप हमें छोड़कर मत जाओ। उन्होंने पूछा क्यों? उत्तर आया, आपके यहां खड़े रहने से हमारी नरक की पीड़ाएं समाप्त हो गई हैं। सोचना है इस पर। तो युधिष्ठिर ने देवदूतों को कहा, भाई तुम जाओ, इंद्र को कह दो कि मैं यहीं रहूंगा, मेरे यहां रहने से नरकवासी सुखी हो गए हैं। क्यों हो गए थे? उनके वाइब्रेशंस के कारण, उनके पुण्य कर्मों के वाइब्रेशंस के कारण, उन्होंने जो सत्य और न्याय अपने जीवन में अपनाया था उसके प्रभाव के कारण। सोच लो अब आप सभी, एक इष्ट देवी, एक महान आत्मा, एक इष्ट देव एक परिवार में मौजूद हो और वो परिवार सुख शांति से भरपूर न हो, ये हो सकता है? चिंतन करें सभी। एक महान आत्मा, देखो प्राचीन काल में हमारे भारत देश में ये एक आम मान्यता थी कि एक एक एरिया की एक एक देवी, देवी प्रसन्न है, चारों ओर सुख शांति है। ये सब प्रतीक हैं हमारी श्रेष्ठ स्थिति के। इसलिए पहली बात मैं आप सभी को कहूंगा, आपका जीवन खुशहाली से भरा हो, आपका परिवार आनंद से, संपन्नता से, समृद्धि से भरपूर हो, आपको कदम कदम पर सफलता प्राप्त हो, विघ्न आपका मार्ग न रोके, इसके लिए एक ही बात आवश्यक है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति, चेहरा और चलन, इसमें सब कुछ आ गया। चलन माना सारा दिन हमारा कार्य व्यवहार, हमारा बोलने का तरीका, हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार, हमारे काम धंधे में हमारी स्थिति। मैं आपको एक अनुभव सुनाऊं एक माता का, जो मेरे पास समाधान पूछने आई। बेचारी परेशान सी थी, कहा हम दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच इतनी लड़ाई है कि कभी कभी पड़ोसी आते हैं छुड़ाने के लिए और वो कहते हैं तुम तो ओम शांति में जाते हो, लड़ते क्यों हो? कहा हमें इतनी लज्जा आती है, उनके घर में शांति है, ज्ञानियों के घर में शांति की तलाश है। तो बेचारी पूछने आई थी मैं क्या करूं। मैंने उसको बताया कि लड़ती तो तुम दोनों ही हो ना, अकेला पति तो नहीं लड़ेगा ना, तो तुम्हें कुछ करना है, कुछ करना है। लड़ाई का कारण मनुष्य का अभिमान। जो अपने को बुद्धिमान समझे वो झुक कर चले, वो सहन करके चले, जो भी बुद्धिमान अपने को समझे। देखिए बुद्धिमानी का मनुष्य को अहंकार भी होता है, लेकिन मैं बुद्धिमानी का एक दूसरा रूप आपके सामने रखता हूं। यदि आप सोचते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए ये नहीं कहूंगा आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन इस तरह चिंतन करें, बुद्धिमान वो है जो झुक कर चले, बुद्धिमान वो है जो संगम युग का संपूर्ण फायदा उठाए, बुद्धिमान वो है जो अपने को कहीं भी उलझाए नहीं, बुद्धिमान वो नहीं है जो बात बात में टकराता रहे, बुद्धिमान वो भी नहीं है जो सदा दूसरों को देखता रहे, बुद्धिमान वो भी नहीं है जो परेशान रहे बिना बातों में। हम सचमुच बुद्धिमान हैं, हमें अपनी बुद्धिमानी का सदुपयोग करना है, अपने जीवन को खुशहाली से भरना है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें कहूंगा, आप जीवन में खुश रहें, आपका चेहरा दिखाए कि इन्हें भगवान मिल गया है, हमारा चेहरा दिखाए कि हमने संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर लिया है, हमारा चेहरा दिखाए कि भगवान को पाकर हम संतुष्ट हो गए हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आप सभी को एक छोटी सी प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, और वो प्रैक्टिस हम सभी आप सभी रोज किया करेंगे। लाल लाइट वाले तो नहीं है ना भाई, ठीक है सफेद में ही करेंगे हैं। चलो बाबा की तरफ बुद्धि ले जाएं, सच्चे मन से बाबा को धन्यवाद दें। हे मेरे परम पिता, मेरे मन के मित्र, जीवन के साथी, बिल्कुल सच्चे मन से बाबा आपको पाकर हम संतुष्ट हुए। भर ले अपने अंतर मन में, हे भाग्य विधाता, तुम्हें पाकर मैं आत्मा संतुष्ट हुई। हे सुखों के सागर, हमने आपको भूल कर कष्ट पाए, अब तुम्हें पाकर हम संपूर्ण सुखी हुए। मैं बहुत सुखी, हे प्राण निधान, हे सर्वशक्तिवान, तुम्हें पाकर हम बहुत बहुत खुश हुए। ओम शांति। आप सभी भक्ति का पूरा आनंद ले ही रहे हैं, भक्ति से आप अपने पुरुषार्थ की कुछ सुंदर प्लानिंग करेंगे, बहुत बातें आप यहां सुनेंगे, उनको सुनकर आप ये नहीं सोचेंगे क्या क्या करें, सब कुछ करने के लिए थोड़ा सा ही करना होता है, सब कुछ प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ही करना होता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है हमारे सुंदर विचार, इसलिए अपने जीवन को खुशहाली से भरने के लिए रोज सवेरे उठकर सभी अपने मन को सुंदर विचारों से भरेंगे। अमृत वेले को अमृत वेला इसलिए भी कहा जाता है कि ये वेला स्वयं को ज्ञान के अमृत से भरने की वेला है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं, इस मुहूर्त में इस काल में हम ब्रह्म लोक में विचरण कर सकते हैं। तो सभी सवेरे उठकर, मैं सभी को सिखाता आता हूं, मैंने भी सीखा है, उस दिन जीवन में बहुत आनंद आता है जिस दिन सवेरे 5 मिनट भी अपने को सुंदर विचारों से भरपूर कर लेते हैं। सभी उठते ही सच्चे मन से बाबा की ओर देखकर दोनों हाथ ऊपर करके संकल्प करना, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं, मैं बहुत धनवान हूं। ध्यान देना इस बात पर आप, मैं सफलता मूर्त हूं। जो संकल्प आप सवेरे करेंगे उसको बढ़ाएंगे। बिल्कुल ध्यान दें, कोई भी भूल से भी सवेरे उठकर विशेष रूप से ये संकल्प कभी नहीं करेंगे, बाबा मैं तो आपका गरीब बच्चा हूं। बड़े खुश होते हैं कई लोग ये सोच के कि सवेरे बाबा को बता रहे हैं, उसे पता नहीं है कि बाबा मैं आपकी गरीब बच्ची हूं। नहीं, बाबा मुस्कुराएगा ना कि मैंने इनको अथाह खजाने दिए हैं और ये अभी भी अपने को गरीब मान रहे हैं। नहीं, ये गलती कोई ना करे, गलती कर रहे हैं लोग, संकल्पों की गलती। अटेंशन से समझ लेंगे, जो कुछ आज हम हैं सुखी या दुखी, जो कुछ भी हम हैं परेशानियों में या निर्विघ्न, सफलताओं की ओर या कदम कदम पर बाधाएं, इस सब का कारण पास्ट के संकल्प हैं। चेक कर सकते हैं, जो युवक भी बैठे हैं अटेंशन देंगे, जो संकल्प आज हमारे होंगे वो हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। हमारा वर्तमान हमारे पास्ट के संकल्पों की प्रतिछाया है। संकल्प बदल दो, जीवन बदल जाएगा। सभी संकल्पों पर ध्यान दें, जीवन खुशियों से भरपूर रहे। मैं एक उदाहरण सुनाया करता हूं, बहुत सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण है। सोमनाथ देखने हम गए, घूम रहे थे तो प्यास लगी थी, एक छोटी सी दुकान पर गए, खोखा था लकड़ी का। देखिए इस व्यक्ति की कहानी सुंदर। हमने उसको कहा हमें एक लिमके की बोतल दे दो। उसने क्या किया, लिमके की बोतल उससे मुश्किल से 4 फीट दूर होगी, उसने डांस करते हुए लिमके की बोतल उठाई, गीत गाते हुए। फिर लिमके की बोतल को 3 बार ऊपर फेंक के पकड़ा, गीत गाया। फिर ढक्कन खोलते हुए गीत गाया। फिर डांस करते हुए हमें दिया। दूसरे ने कुछ और मांगा, उसको भी ऐसे ही दिया। जल्दी नहीं करता था। जब सबने ले लिया, हमने उससे पूछा आप बहुत खुश रहते हैं, तो देखो उस व्यक्ति ने, जिसकी आयु 30-32 साल होगी, कपड़े भी हम जैसे ही पहने हुए थे, उसने उत्तर दिया, कहा भाई मैंने अपने जीवन में संकल्प किया है, मन बना ली, कुछ भी हो जाए मुझे तो खुश रहना है। हम 5 थे, हम एक दूसरे को देखने लगे, ये लड़का गरीब धनवान नहीं, खुशी को इसने अपना धन बना लिया है, और हम पूछें अपने से 5 क्या भगवान को पाकर हम इतने खुश हैं। सोच लें आप, आदत बना लें, खुश रहना है। मैं जानता हूं माताओं को कौन खुश नहीं रहने देते, माताओं को कौन खुश नहीं रहने देते, उनके बच्चे। बहुत प्रैक्टिकल है, खुश रहना है। भाई लोग तो बाहर चले जाते हैं, थोड़ा मस्त रहते हैं, माताएं घर में रहती हैं, सारा दिन लड़की के साथ ही रह रहे हैं। अब छुट्टी पड़ गई, 3 मास वो घर में ही रहेगी, वो तंग करती है, हम तंग होते हैं। तंग करने वाला तंग कर करके खुश होता है, वाह मैं अपने काम में सफल, और ये भगवान के महावीर महावीरनिया तंग होते रहते हैं। कौन पावरफुल हुआ बताओ, कौन पावरफुल हुआ? बहुत अच्छी तरह सभी चिंतन करें, अभी करें और रोज करें। आपके परिवार में इस अंतिम जन्म में जो आत्माएं आपकी साथी बनी हैं, बच्चे के रूप में, माता पिता के रूप में, पति पत्नी, जो भी संबंध हैं, आपके जो भी साथी बने हैं, सबको जान लेना चाहिए, उनसे हमारा ज्यादा से ज्यादा कर्मों का बंधन है। हंस के पूरा करो चाहे रो के करो, कर्ज लिया था देना पड़ेगा, उसको सताया था वो सताने आ गई है। ठीक बात है या नहीं? मुझे माताएं मिलती है ना, बहुत बताती है अपनी, वो सच्ची बातें हैं। कष्ट होता है, अपने ही बच्चे कष्ट दें बहुत कष्ट होता है, परंतु सहज भाव से पूरा करना है। सहज भाव से मैं आपको एक माता की कहानी सुनाऊं, ये बात सभी को सीख लेनी है, बहुत ही सुंदर है। इसी सीजन में मेरे पास आई, बाबा से मिल ली थी लेकिन चेहरे पर उदासी थी। मैंने उसे पूछा क्या हुआ, भगवान नहीं मिला? कि नहीं मिला, बहुत अच्छा। ये कहने में भी मजा नहीं आया था उसको कि बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्या समस्या है, उदास क्यों हो? कहा एक 10 साल की लड़की, एक 7 साल का लड़का। लड़का बहुत अच्छा, लड़की जो है अपने पापा से बहुत प्यार करती है, अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे जैसे ही देखती है तो खा जाऊं मम्मी को। कहा उसके कारण मुझे उदासी है। देखिए छोटी बच्ची है, उसके व्यवहार से मां को परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी उपस्थिति ही मां को कष्ट दे रही है। क्यों, आप समझ गए ना, पूर्व जन्म में इसने उसको बहुत सताया है, वो बदला लेने आई है, उसके वाइब्रेशन से इसकी खुशी छीन रहे हैं। क्या करें? सभी जो भी बच्ची में आए हैं ये छोटा सा काम कुछ दिन कर लें। मैं अभी अभी दिल्ली में था, वहां एक भाई है बहुत सीनियर सेंटर में, वो कराता है बहुत अच्छे प्रोग्राम। उसने मुझे अनुभव सुनाया कि रोज दिन में 3:30 से 4:30 हमने भट्टी का प्रोग्राम रखा था। आप देखो दिन का टाइम माताओं के लिए खास, तो बहुत भाई रहने आते थे। हमने 40 दिन क्षमा याचना का प्रोग्राम भी कराया कि जिन आत्माओं को हमने कष्ट पहुंचाया है मन ही मन उनसे क्षमा मांग लो। कहा 40 दिन में बहुतों के को घुटने दर्द ठीक हो गए, एक का मुझे बताया, ये बहुत अच्छा अनुभव था, मुझे भूल गया उसने क्या बताया, कि उसको कोई बड़ी बीमारी थी, 40 दिन में ठीक हो गई। कहा 40 दिन से पहले नहीं हुआ था, जैसे ही 40 दिन के बाहर निकलने लगे और सब ठीक होने लगे। तो ये जो हमारे कर्म बंधन हैं इनमें खुश रहना, ये सच्ची विवेकशीलता है। हिसाब किताब लेने आई हैं आत्माएं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, अनेक समस्याएं भी परिवारों में बढ़ रही हैं। इसलिए भाइयों को मैं कहूंगा, अपने को काम धंधे के विस्तार में भी ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए। क्या विचार है भाइयों का? बहुतों को बिजनेस है, वो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, बढ़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन फंस जाना, ज्ञान और योग ही छूटना, ऐसे धन से बहुत कष्ट होगा विनाश काल में, क्योंकि ये धन हमारा साथ छोड़ जाएगा। जिस धन के पीछे किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन ज्ञान योग से भी परे रख दिया हो, उसको बहुत कष्ट होगा। इसलिए भले ही आप अपने काम धंधे बढ़ाएं, लेकिन स्वयं को कहीं उलझाएं नहीं। कईयों ने अपने धंधे इतने बढ़ा दिए, उधारी कर ली, 10 करोड़ का कर्ज हो गया, अब स्थिति ये हो रही है कि मर जाऊं, कर्ज लौटा नहीं रहे वापिस, पैसा दे नहीं रहे हैं लोग। ध्यान देंगे सभी, ये कलयुग का अंत है, इसमें काम धंधे भी अपने कंट्रोल में ही रखने हैं। समझ रहे हैं ना भाई मैं क्या कह रहा हूं? वो सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ जाती है। लक्ष्य रख लें सभी, बहुत सुंदर लक्ष्य है, कुछ भी हो जाए बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, हमें स्थिति नहीं बिगाड़नी है, मजबूत करेंगे अपने को। ये मेरा अपना जीवन का अनुभव है, मैंने बहुत साल ये लक्ष्य रखा, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ बोल दे, कहीं हमसे गलती हो जाए, कुछ अनहोनी चीजें आने लगे, महान अपमान निंदा स्तुति हार जीत सुख दुख सब आता है, हमें अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। क्योंकि स्थिति बनने में लगता है बहुत समय और बिगड़ने में लगता है सेकंड। अटेंशन ही थोड़ा सा देंगे तो जल्दी ही उन चीजों से बाहर आ जाएंगे। मैं सभी के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम देना चाहता हूं, मुझे विश्वास है आप स्वीकार करेंगे। आपके परिवार में और काम धंधों में विघन समस्याएं ना आए, सब यही चाहते हैं ना भाई, बाबा के बन गए, लोग भी देखें कि ये भगवान के बने हैं, इनका जीवन निर्विघ्न है, और हमें भी लगे कि बाबा के बनने पर हम बहुत सुखी हो गए, समस्याओं से मुक्त हो गए। एक छोटा सा काम लेकिन दृढ़ता पूर्वक करना है, और वो है दिन में 3 बार, मैं क्लासेज में बताता हूं, 10-10 मिनट अपने घर में योग में बैठना है। जो लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, 3 बार में अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस घर में फैलाने हैं, तो आपके पास विघ्न आएंगे नहीं, आपको विघ्नों में समय नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां नहीं देनी पड़ेगी, स्थिति नहीं गंवानी होगी। पहला 10 मिनट टाइमिंग आप अपने अनुसार सेट करें। एक जैसे उदाहरण दूं, एक सवेरे 5 से 6 कर सकते हैं, 6 से 7, ये 3 टाइम अमृत वेला योग के अलावा होंगे। 8 से 9 कर सकते हैं या 9 से 10 कर सकते हैं। माताएं जैसे घर में नाश्ते आदि का काम पूरा हो गया, 9 बजे आप फ्री हो गए, 9 से 10-15 मिनट कर लो, दिन में ऐसे ही 10 कर लो, इवनिंग टाइम कोई भी 15 मिनट कर लो। पहले 10 मिनट, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, यह है अपने घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने के लिए, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, बाबा से, बाबा पवित्रता के सागर, बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं, जैसे पूरे घर में फैल रही हैं, जैसे पूरा घर पवित्र किरणों से, रंग भी दे सकते हैं आप, गोल्डन किरणों से, सफेद किरणों से भर गया है। 10 मिनट आप ये अभ्यास करें, देखें आपके बच्चे भी कैसे आज्ञाकारी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के बिगड़ने की मार्जिन बहुत बहुत हो रही है, इसमें युवकों का दोष भी नहीं है, चार ओर वातावरण में ही तांत्रिकता है, उनके लिए निगेटिव आकर्षण ही बहुत हैं। आप उन्हें कुछ भी कहेंगे घरों में संघर्ष होगा, आपकी खुशी जाएगी, बच्चे आपसे दूर होंगे, प्रेम संबंध में कड़वाहट होगी, इससे आपको भारी पड़ेगा, घर में आप वाइब्रेशंस फैलाओ। दूसरे 10 मिनट बहुत सुंदर विधि है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ज्ञान सूर्य बाबा मेरी आंखों के सामने है, बिल्कुल सामने। उसकी रंग बिरंगी किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं, पूरा घर ज्ञान सूर्य की किरणों से भर गया है। 10-15 मिनट आपको बहुत आनंद आने लगेगा, एकाग्रता बढ़ने लगेगी, योग करने को मन करेगा। ये तीन बातें आपके जीवन की अनेक बातों को ओपन करेंगी। तीसरी बात, तीसरे 10 मिनट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परम धाम में बाबा सर्वशक्तिमान, उसकी किरणें मुझ में समाकर पूरे घर में फैल रही हैं। आप ये करके देखो, मैं आपको कहूंगा आप 3 मास करके देखो, आपकी स्थिति कितनी अच्छी होती है। टाइमिंग फिक्स करके करेंगे तो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि अगर हम एक ही टाइम पर बार बार करते हैं रोज, तो हमारा ब्रेन उसी समय हमें सहयोग करने लगता है। टाइम बदलने से ब्रेन को फिर से सेट करने में टाइम लगेगा, इसलिए आपने टाइम फिक्स कर लिया सवेरे 9 बजे, सवेरे 6 बजे, तो वही टाइम करेंगे। पसंद है भाइयों को? सब कर सकते हैं, स्थिति बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी, घर का वातावरण आकर्षण करने वाला होगा। मुझे याद आ रही बाबा की बात इस बार की लास्ट मुरली में, बाबा ने टीचर्स को कहा सभी सेंटर्स का वातावरण ऐसा बनाओ, याद है ना? मधुबन वालों को कहा मैं आपको कहूंगा, आपका घर भी तो बाबा का यज्ञ है ना, आपका घर भी सेवा स्थान है, घर को लाइट हाउस बनाएं, आप अपने घर के वातावरण को ऐसा बनाएं लोग कहें अशांति हुई है, चलो 10 मिनट इनके घर में बैठ के आते हैं, बस टेंशन हुई है चलो इनके घर में बैठ कर आएं। ऐसा भी समय आएगा कि बीमार हुए हैं चलो इनके घर में बैठें मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भी समय आएगा। लेकिन आपको अपना घर ऐसा बनाना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी पहले माताओं की है। क्या समझती हैं माताएं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको कह दूं, हो सकता है पहले दिन आपका योग ना लगे, लेकिन मनुष्य को ये टेक्निक, ये विधि सीख के ही रखनी है कि निराश नहीं होना है। चलो अब बहुत सुंदर गीत बजेगा और हम अभ्यास करेंगे, ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
प्रभु का ध्यान की
सभी उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारी खुशी को छीनती हैं। बच्चों के लिए फिर मैं सबको कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि माँ बाप की अपने बच्चों से बहुत श्रेष्ठ कामनाएं होती हैं, वो उन्हें बहुत आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। कईयों के बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी हैं, वो परिवार तो सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं जिनके बच्चे सपूत हों, आज्ञाकारी हों। परंतु यदि कुछ आगे पीछे है तो छोटी सी विधि का प्रयोग करके आप अपने बच्चों को अच्छे वाइब्रेशंस देंगे। दिन में दो बार उन्हें देखते हुए ये संकल्प करेंगे, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। सभी कर देंगे पहले से, चाहे आपके बच्चे ज्ञान में हैं या नहीं हैं। कई माताओं को समस्या होती है, मेरा लड़का बचपन से यहाँ आता है, 10 बार सेवा कर गया, 10 बार बाबा से मिल गया, अब बाबा का एंटी हो गया। इसमें भी आप परेशान न हो, सब आत्माएं बाबा से अपना अपना भाग्य लेकर जा भी रही हैं। किसी के भाग्य पर किसी का अधिकार नहीं है। या है, जबरदस्ती भाग्य बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने को थोड़ा हल्का करो। किसी दूसरे के कारण यदि हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं तो आप विचार कर लो, ये बुद्धिमानी है? बच्चा आपका ज्ञान में नहीं चल रहा है और आप अपनी स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, तो आप भी ज्ञान में कहाँ चल रहे हैं? ठीक बात है या नहीं? समझदार बन जाए माताएं, परेशान नहीं होंगी। आप अपना केवल कर्तव्य पालन करो, बच्चों को अच्छे वाइब्रेशंस देना, ये माता पिता का परम कर्तव्य है। किसी का भाग्य निर्माण वो या तो बाबा के हाथ में या उनके अपने हाथ में है, आप तो केवल उन्हें मदद कर सकते हैं। क्या विचार है माताओं का? ठीक है, बच्चों से परेशान नहीं, वाइब्रेशंस, ठीक है, वाइब्रेशंस देते रहे बहुत अच्छे। हमारी चलन, चलन में सबसे ज्यादा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है हमारे संतुष्ट जीवन का। यदि हम में अभी तक भी आसक्तियां हैं, यदि भगवान को पाकर भी हमारी इच्छाएं कम नहीं हुई हैं, यदि प्रभु प्यार पाकर भी हम बहुत सारी कामनाओं से घिरे हुए हैं, तो प्रभाव कम पड़ता है। इसलिए अपने को संतुष्ट करें। देखिए, विनाश काल के लिए मैं सोचा करता हूं कि बाबा हम सभी को टाइम दे रहा है, तैयार करो, अपने को तैयार करो। विनाश काल के लिए सभी को अभी से तैयारी कर देनी है, जो कुछ है उसमें आनंदित। भूख लग रही है, क्या चाहिए? रोटी चाहिए, अचार से भी मिल जाए तृप्त। और अचार से रोटी खा तो रहे हैं, लेकिन परसों की बात याद कर रहे हैं कि परसों तो 5 सब्जी खाई थी, रसगुल्ले भी थे, पनीर भी था, ये क्या कर दिया बाबा तुमने? तो सूखी रोटी से पेट नहीं भरेगा, दर्द होने लगेगा। आदत डाल लें अभी से, जो है जैसा है उसमें खुश। बाबा ने वायदा कर दिया है, कौन सा वायदा? अपने बच्चों को वो भूखा नहीं रखेगा। विश्वास कर लें सभी, विश्वास करें। मैं माताओं को एक बात और कहना चाहूंगा, भाई सोच रहे होंगे मैं माताओं को ज्यादा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माताएं थोड़ी ज्यादा दुखी हो जाती हैं, मुझे बच्चे को बड़ा ऑफिसर बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबकी ये शुभकामनाएं होती ही हैं, होनी ही चाहिए, लेकिन एक बात सीख लें सभी भाई बहने, इंग्लिश का शब्द है इनसिक्योर फीलिंग नहीं, असुरक्षा की भावना नहीं। उदाहरण, एक माता मेरे पास आती है, लड़की उसकी ज्ञान में है, बहुत मजबूत है ज्ञान में, अपनी लड़की को भी लाती है और मुझे कहती है इसको समझाओ ये शादी कर ले। 20 साल से चली हुई माता ज्ञान में। मैंने कहा क्यों? कहा मुझे चिंता है, कल मैं नहीं रहूंगी इसका क्या होगा। मैंने कहा ऊपर बैठा भगवान क्या कर रहा है, उसको कोई काम नहीं, तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी है दुनिया की। कई लोग तो ऐसे समझते हैं को चलाने का ठेका भी मेरा ही है, इतने दुखी रहते हैं, सारा बोझ लिए हुए सिर पर। मैं उनको हंसी में कहा करता हूँ फिर बाबा क्या करेगा, सारा बोझ तुमने ले लिया, बाबा खुश होगा, मैं बिल्कुल मुक्त। हल्के हो जाओ, ये नहीं, जिनको संभालने वाला स्वयं भगवान हो उनकी चिंता की क्या जरूरत है, जिनकी चिंता वो कर रहा हो भला हम उनकी चिंता करके अपने को परेशान क्यों करें। चिंतन बढ़ाओ, मेरे कुमार हैं भाई इन्हें कहो शादी कर लो, कल ये बूढ़े होंगे। सच्ची बात कह रहा हूँ, कुमार अभी 20 साल का, माता कह रही कल ये बूढ़े होंगे इन्हें भोजन कौन खिलाएगा, शादी कर लो। सोच लो सभी, कितना निश्चय है इस बात में। जिनको महान कार्य करना होता है उन्हें त्याग भी करना होता है, सहन भी करना होता है। मैं आपको याद दिला दूं, आजकल कोई याद नहीं दिलाता, पर भगवान हुआ अच्छे, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, आपकी कन्या आपका कुमार यदि पवित्र जीवन जीना चाहता है और आप उनकी शादी कराते हो तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया, इसका फल मिलता है। मेरे सामने उदाहरण है, बिल्कुल सच्चे उदाहरण, माताओं ने ये गलती की और माताओं की कितनी दुर्गति हुई। एक उदाहरण सुना देता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। उसके टीचर उसकी माता को मेरे पास लाई, 2 साल पहले की बात है, राजस्थान की वो माता, 3 कुमार थे उसके, कहा एक को शादी करो, मेरे घर में कोई नहीं, तुम तीनों ही पवित्र, मेरा घर तो सूना हो गया। माताजी परेशान हो उठी, बड़े लड़के को किसी तरह तैयार किया, उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। अब देखो क्या होता है, क्या क्या होता है शादी में मुझे पता नहीं भाई, मैं शादियां नहीं देखता। लड़का घोड़े पर या घोड़ी पर चढ़ा हुआ था, माताएं पास खड़ी थी, घोड़ा बिदक गया, लड़का गिरा, सिर लगा सीढ़ी पर, तुरंत मृत्यु हो गई, मां पागल हो गई, शादी हुई नहीं। 1 साल लगा उस मां को बाहर निकालने में, यहां लाए थे तो बाहर नहीं निकली थी। इसलिए जो पवित्र रहना चाहते हैं उन्हें सहयोग दो, जो नहीं रहना चाहते उनकी बात नहीं, जो रहना चाहते हैं, ठीक है। क्या समझती है माताएं? मैं जानता हूं बहुत सारी समस्याएं समाज में कन्याओं के लिए हैं, कन्याओं को घर में रखना माँ बाप के लिए बहुत कठिन काम होता है, हम जानते हैं, लेकिन जो पवित्र हैं उनकी पवित्रता संसार बदलने में बहुत बड़ा सहयोग देती है, उनकी पवित्रता स्वयं ही उनकी रक्षा करती है, उनकी पवित्रता उनके लिए बहुत बड़ा रक्षा कवच बन जाता है। इसलिए इस बात में सभी अपने बच्चों को सहयोग करें। बहुत केस हो चुके हैं, कन्याओं की शादी कराई, 1 साल में वापिस आ गई घर, और बुरी हालत में आई, डिप्रेशन लेकर आई, अब उसको जीवन भर संभालना अत्यंत कठिन हो गया। रोज के किस्से हो रहे हैं ये, क्योंकि आजकल जो घर मिलते हैं आप जानते हैं नहीं चैटिंग हो रही है, कलयुग का अंत है, पाप की अति है, इसलिए सभी भाई बहने अपने बच्चों को सहयोग करें। अगर वो पवित्र मार्ग पसंद कर रहे हैं तो आप समझ लें आप बहुत भाग्यवान हैं, जिनके बच्चे पवित्रता अपनाना चाहते हैं आपका कर्तव्य है उन्हें सहयोग देना। एक बात और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, भाषण नहीं ये, क्लास नहीं, मैं एक बात और आपको सिखाना चाहता हूं। मैंने सुना आज राजू भाई ने बहुत अच्छी क्लास कराई, ब्रह्मा बाबा के 8 कदम समर्पणता, सुनाया होगा। आप सब सोचते होंगे कि बाबा की तरह हम कैसे समर्पित होंगे, फॉलो कर नहीं सकते उसको। मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूं, मैंने भी सीखी ये। देखो कभी कभी हम छोटों से बहुत अच्छी बात सीख लेते हैं। 2 साल पहले एक जगह एक छोटा सेंटर था, 2 कन्याओं ने खोला था, हमारे पास आती हैं बचपन से ही, तो मुझे कहा हमारे सेंटर पे 15 मिनट तो चलो। गए हम बाबा के कमरे में, गए तो बाबा के चित्र के आगे एक बैग रखा हुआ उन्होंने। मैंने कहा ये बैग और बाबा के फोटो के आगे, मैंने पूछा नहीं। तब 15 मिनट क्लास थी, क्लास के बाद बाबा के कमरे में आ गए, उन्होंने वो बैग मुझे गिफ्ट दिया। मैंने उनसे पूछा ये बाबा के चित्र के आगे क्यों रखा था, तो देखो छोटी कन्याएं कितनी सुंदर बात थी, उन्होंने कहा हमारे पास जो कुछ आता है पहले हम बाबा के आगे रख देते हैं, बाबा इसको स्वीकार करो। मैंने भी सीख लिया, आप भी सीख लें, छोटा सा नियम चालू करें अपने जीवन में, जो कुछ भी आप लाएं, मैं माताओं को सबसे छोटी चीज से कहता हूं आप बाजार से सब्जी खरीद कर लाए, बाबा के आगे बाबा को समर्पित करो। भाइयों को सैलरी मिली, बाबा के आगे रखकर बाबा को समर्पित करो, तो आपकी पालना कहां से होगी, बाबा के भंडारे से। आप घर में कपड़े लाए, बच्चों के लाए, अपने लाए, बाबा के आगे रखो, बाबा इसे स्वीकार करो। समझ गए ना, समर्पण भाव शुरू करो इसको आप, फिर आप बड़ी बड़ी चीज भी समर्पित कर सकेंगे। जैसे जीवन में समस्या, बाबा तुमको अर्पण, कोई बीमारी आ गई अब तुम संभालो ये शरीर, तुमको अर्पण, सुंदर सुंदर अनुभव होंगे। बच्चों की कुछ समस्या आ गई, ये तुम्हारे हैं संभालो, संभालेगा। समर्पणता को अपनी नेचर बनाएं। बोलो पसंद है, पसंद है। भोजन बनाएं सभी, तो भोजन पहले बाबा को समर्पित, अभी से आदत डाल लें, सब कुछ तेरा, मन से। देखो ये मन की बात है, ये स्थूल बात नहीं है, कोई स्थूल रूप में समर्पित होकर यदि मैंपन और मेरेपन में रहे तो वो समर्पणता नहीं है। कोई घर में रहकर सब कुछ तेरा इस भाव में रहे, संपूर्ण समर्पणता है। इससे आपको जीवन में बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो मैं आपको कहूंगा 1-7 दिन के लिए केवल आप इस एक बात की प्रैक्टिस कर लो कि सब कुछ समर्पित करना है। कोई बात आ गई, बाबा तुमको अर्पित। कोई समस्या आ गई, ले जाओ बाबा ऊपर। कुछ लाए खरीद के स्वीकार करो। देखो कितना अच्छा होगा। पानी पी रहे हैं, क्या करेंगे, तुमको अर्पण। समर्पणता की प्रैक्टिस करो। कपड़े भी पहन रहे हैं ना, ये कपड़े तुमने दिए हैं, ये शरीर भी तुम्हारा है, ये धन भी तुम्हारा है, सब बढ़ता जाएगा और आप निश्चिंत होते जाएंगे। ऐसा जीवन बनाएंगे तो हमारी स्थिति, हमारा चेहरा बहुत सेवा करेगा। बोल सबसे ज्यादा इफेक्ट संबंधों में किसका होता है? बोल का। और बोल हमारे सुखदायी तब होते हैं जब हम क्रोध और अभिमान से मुक्त हों। इसलिए मुझे पता नहीं यहां क्लास हुई है या नहीं, इन दो पर विशेष ध्यान देना है, क्रोध और अभिमान से मुक्त। मैं आप सभी को ऐसा कहूंगा, ज्ञान योग के पथ पर चलते हुए किसी मनुष्य ने यदि अहंकार का त्याग कर दिया तो समझो आधी यात्रा पूरी कर दी। अहंकार ही मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। जिन्होंने पवित्र जीवन जिया है उनको ये क्रोध और अहंकार रोकने लगते हैं। रोज सवेरे, जैसे मैंने आपको कहा, सवेरे अपने मन को सुंदर चिंतन से भरेंगे। जिसको भी क्रोध सताता हो बहुत डीपली, केवल दो मिनट के लिए बैठकर बाबा से इस तरह बातें कर लेना, बाबा मेरा चित्त शांत हो गया है, मैं क्रोध मुक्त हो गई हूँ, आपने मुझे शांत कर दिया, मेरा जीवन क्रोध से मुक्त है। संकल्प करो पांच बार। पहले दिन से आपको अनुभव होगा क्रोध का फोर्स कम होने लगा। इसको कम तो करना ही है। सब चाहते हैं क्रोध न हो, क्योंकि क्रोध हमारी खुशी को छीन ले जाता है, क्रोध हमारी एकाग्रता को नष्ट कर देता है, क्रोध विवेक शक्ति को जला देता है, क्रोध अग्नि आत्मा को जलाती है, शांति को जलाती है। सभी अपने को शांत करेंगे, ऐसा जीवन बनाना है। संसार देखे समस्याएं तो इनके पास भी हैं, लेकिन ये शांत हैं। चीजें तो इनके पास भी कम हैं, लेकिन ये संतुष्ट हैं। बातें तो इनके जीवन में भी आ रही हैं, लेकिन ये बहुत खुश हैं। प्रभु मिलन की पूरी अनुभूति, पूरा आनंद चेहरों पर दिखाई दे। तो लास्ट बात आपको कहूंगा, आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन रोज सवेरे उठकर एक बार ये जरूर याद किया कर लेना, इस जीवन में कौन मिला है, कौन मिला है, सोच लो, अच्छी तरह चिंतन में ले आना। इस जीवन में क्या क्या देखा, इन आंखों से क्या क्या देखा, ठीक है ना, कौन मुझे साथ दे रहा है। बाबा ने कहा था ना, बेफिक्र बनो, बेफिक्र बादशाह वो बनेंगे जो फिक्र देकर फकुर लेंगे। फकुर है ये, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, किसने मेरी जिम्मेदारी ली है, किसके हाथों में मैंने अपना जीवन सौंप दिया है। इस तरह के चिंतन से अपने को हल्का करें, निश्चिंत करें, तो चेहरों पर अलौकिकता रहेगी, हमारी एक्टिविटी, चरित्र, हमारा कर्म करने का तरीका बहुत सुंदर, प्रेरक, दूसरों पर अमिट छाप डालने वाला होगा। आपके पूरा परिवार और समाज आप देख सकेंगे आपका विरोध नहीं करेगा, सहयोग देगा। स्थिति श्रेष्ठ तो सबका सहयोग मिलेगा ही। बीज से कनेक्शन है तो पूरा कल्प वृक्ष सहयोग देगा ही। सभी बहुत गहन चिंतन से भट्टी पूर्ण करेंगे और मुझे विश्वास है भट्टी के बाद सभी का जीवन, सभी की साधनाएं बदल जाएंगी। ठीक है, ओम शांति।